अमृत
चैतन्य चरितामृत
श्रूयताम श्रूयताम नित्यम
श्रूयताम श्रूयताम नित्यम
गीयताम गीयताम मुदा चिन्त्यताम चिन्त्यताम भक्ता चैतन्य चरितामृत श्रूयताम श्रूयताम नित्यम
श्रूयताम श्रूयताम नित्यम
गीयताम गीयताम मुदा चिन्त्यताम चिन्त्यताम भक्ता
चिन्त्यताम चिन्त्यताम भक्ता
चैतन्य चरितामृत
चैतन्य चरितामृत
ओम ज्ञानति था वो आ गए हैं रामचंद्र प्रभु प्लीज दुविधा में फंस गए प्रभु जी आइए क्या किया जाए ये ठीक नहीं है कि वरिष्ठ गण हमारी सभा में हो और हम कुछ बोले प्रभु जी आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं आगे तो आइए तो आज चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद है उनकी लीला श्रवण करने का और श्रवण कराने का हमें यहाँ पर अवसर प्राप्त हुआ है तो संकल्प तो लिया है यहाँ पर कुछ बोलेंगे लेकिन दुख इस बात का है कि न तो हमारे पास कोई भाव है न तो कोई बड़ा ज्ञान है और न ही भी किसी भी प्रकार की भाषा और माया के प्रभाव में पड़े हैं लेकिन फिर भी आप सब भक्तों की कृपा से और गौर निताय के चरणों की छत्र छाया में बैठकर मैं कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। श्री रूप गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु को सर्वप्रथम मिले तब उन्होंने यह श्लोक उच्चारण किया, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। हे चैतन्य महाप्रभु, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, आप महादानी हैं। प्रश्न होता है चैतन्य पर महाप्रभु को महादानी क्यों कहा गया है? इस संसार में दानी तो बहुत हुआ करते हैं, इन संसार में दान देने वाले बहुत लोग होते हैं। कोई पैसे मांगने वाला भिखारी किसी रईस व्यक्ति के पास जाता है तो वह कुछ पैसे देते हैं या कुछ वस्तुएं दिया करते हैं और यह देना इसे दान कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा व्यक्ति को सुना है कि ऐसा रईस ऐसा दान देने वाला जो किसी भिखारी को दान भी देता है और दान देने के साथ उस दान को रखने का पात्र भी देता है? दानी तो कई सारे मिलते हैं लेकिन दान भी दे और दान के साथ पात्रता भी दे ऐसे बहुत कम। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के कई सारे अवतार हुए और अनेक अनेक अवतारों में भगवान ने कोटि कोटि उपकार सभी जीवों पर किया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जो उपकार किया है उतना उपकार भगवान के किसी ने भी, किसी अवतार ने भी नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु जिस व्यक्ति को मिलते थे उस व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करते थे, और शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए पात्रता भी चाहिए, यह पात्रता भी चैतन्य महाप्रभु प्रदान करते थे। और भगवान के कई सारे अवतार हो गए। भगवान भक्ति देने की बात तो दूर रही, भक्ति का जो प्रथम स्टेज है श्रद्धा, श्रद्धा भी नहीं दे सके। भगवान श्री रामचंद्र के सामने रावण खड़ा था और रावण के साथ भगवान श्री रामचंद्र का मिलन भी हुआ, लेकिन रावण को श्रद्धा भी नहीं हुई भगवान श्री रामचंद्र में, और कई सारे असुरों का वध किया भगवान श्री रामचंद्र में। और भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम पर आए तो शुरू से ही बड़े बड़े असुरों का वध करना आरंभ कर दिया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब इस धराधाम पर आए तो किसी भी व्यक्ति को मारने की बात तो दूर रही, एक बाल भी नहीं तोड़ा चैतन्य महाप्रभु ने। और इस संसार के सभी व्यक्ति को भगवान की शुद्ध भक्ति प्रदान की, और इसमें किसी भी प्रकार की पात्रता अपात्रता, यहां तक पाषाण हृदय म्लेच्छ मुसलमानों को भी चैतन्य महाप्रभु ने भक्त बनाया। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, झारखंड के जंगलों में शेर हाथी कुत्ते सभी लोगों को भगवान कृष्ण के नाम में महामंत्र में तरंगायित कर दिया। तो यह है चैतन्य महाप्रभु की कृपा। और एक प्रश्न यह भी हो सकता है कि अक्सर हम भगवान का नाम लेते हैं तो प्रभु कहा करते हैं, लेकिन चैतन्य देव को महाप्रभु क्यों कहते हैं? तो व्रज के एक बहुत ही बड़े भक्त हो गए जिसका नाम है नाभाजी, वह कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को महाप्रभु क्यों कहा जाता है? भगवान कृष्ण ने जब उपदेश दिया तो कहा, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरक्तया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ति ते। नाभाजी उदाहरण देते हैं कि दो मित्र थे और 5 साल के दो मित्र थे, और समय जाता गया और दोनों मित्र बड़े हो गए, और एक मित्र अच्छे व्यक्ति की संगति करके राजा बना और एक मित्र बुरे व्यक्ति की संगति करके, चोरों के साथ संगति हो गई इसलिए वह चोर बना। तो एक दिन की बात, पुलिसों के द्वारा उस जो चोर बन गया था उस मित्र को जेल में डाला गया और उम्र कैद की सजा दी गई। तब उस मित्र ने सोचा कि बचपन में मेरा एक मित्र हुआ करता था जो आज राजा है, और अगर मैं इस राजा से विनंती करूं तो यह राजा मुझे इस जेल से छुड़ा सकता है। तब वह चोर जो जेल में था उसने राजा को लेटर लिखा कि कृपया करके आप हमें इस कारागार से मुक्त कीजिए। तब राजा ने जो जेल में जो मित्र था चोर उसे लेटर लिखकर कहा कि अगर तुम मेरे पास आ जाओ तो मैं तुम्हें इस कारागार से अलग रिहा करवा दूंगा, अगर तुम मेरे पास आ जाओ तो मैं तुम्हें कारागार से रिहा करवा दूंगा। वे कभी संभव है? जो कारागार में जेल में बंद है उसे यह राजा कह रहा है कि अगर आप मेरे पास आ जाओ तो मैं तुम्हें छुड़ा दूंगा। तो ठीक इसी प्रकार की बात भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में की कि देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरक्तया। सबसे पहले कहा सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। अगर तुम मेरे शरण में आओगे तो मैं तुम्हारे सारे पाप से मुक्त कर दूंगा। अगर पाप से मुक्त होना है तो तुम्हें मेरी शरण में आना होगा और तब जाकर पाप से मुक्त होगे और मोक्ष प्रदान करूंगा। और वही कृष्ण गीता में कहते हैं कि देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरक्तया, कि जो इस संसार की माया है उसको लांघना बहुत मुश्किल है, तो उसको लांघ कर कैसे जीव कृष्ण के शरण में जा सकता है। ये तो वही चोर और राजा की बात हुई। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार की बात न कहते हुए डायरेक्ट चोरों के पास, अर्थात जो अज्ञान में पड़े थे, जो पाप में पड़े थे, ऐसे जीवों के पास जा जाकर गले मिल मिलकर शुद्ध भक्ति प्रदान की। और वह शुद्ध भक्ति टिकाने के लिए पात्रता भी चैतन्य महाप्रभु ने दी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को महाप्रभु कहा जाता है और किसी भी भगवान के अवतार को प्रभु कहा जाता है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब इस धराधाम पर आते हैं तब अकेले नहीं आते। भागवतम में कहा गया है कृष्ण वर्ण तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम। कृष्ण वर्ण तुषा कृष्णम, द्वापर में जो कृष्ण वर्ण धारण किए थे वो अब त्विषा अकृष्णम, अब वो काले नहीं रहे, अब वह तपाए हुए सोने के समान दिख रहे हैं। और सांगो पांगास्त पार्षदम, अपने संग उपंग और पार्षद के साथ इस धराधाम पर आए। तो चैतन्य महाप्रभु जब इस धराधाम पर आते हैं तो सुवर्ण वर्ण हेमांगो, सुवर्ण वर्ण धारण करते हैं और अपने पार्षदों के साथ आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के अनेक अनेक पार्षद इस धराधाम पर चैतन्य महाप्रभु के साथ आए। लेकिन आज जिस लीला की हमें बात करनी है, आज जिस उत्सव की हमें बात करनी है, तो यह उत्सव चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे जो भगवान के निज धाम में मंजरी हुआ करते थे। अब गौर गुणोदेश दीपिका में कहा गया है दास श्री रघुनाथ्य पूर्वस्था रास मंजरी। जो रघुनाथ दास है वो पूर्व में भगवान के धाम में रास मंजरी थे, लेकिन नाम भेद, लेकिन प्रकारांत के अनुसार अमुक केचत प्रभाषन्ते श्रीमती रति मंजरी, वह रति मंजरी भी थे। और भानुमत्या रूपचा केचिदा दुस्तम नाम भेद था, और वो भानुमती भी थे। ये तीनों का उल्लेख गौर गणदेश दीपिका में हुआ है। तो यह रूप गोस्वामी का परिचय इस प्रकार से है, क्षमा कीजिए, रघुनाथ दास गोस्वामी का परिचय इस प्रकार से है कि सप्तग्राम नाम के गांव में दो व्यक्ति रहते थे जिसका नाम था हिरण्य और गोवर्धन दास, और ये बहुत धनी व्यक्ति थे। और हिरण्य और गोवर्धन के पास विपुल ऐश्वर्य, बहुत ही बड़ा ऐश्वर्य, वैभव, ज्ञान और बहुत ही अच्छे अच्छे गुणों से संपन्न थे। और बहुत ही सुंदर यह दोनों भाई हिरण्य और गोवर्धन दास का बहुत ही सुंदर शील आचरण था, और इसके आचरण से न केवल हिंदू मुसलमान भी इसे मान दिया करते थे कि गोवर्धन गोवर्धन दास और हिरण्य ये दोनों बहुत ही अच्छे व्यक्ति और इतने धनी थे कि उस वक्त ये हिरण्य और गोवर्धन दास की आमदनी 800,000 सोने की मुद्राएं थी। राजा ने उसे कर एकत्रित करने के लिए नियोजित किया गया था, तो 2,000,000 सोने की मुद्रा कर में लेते थे और राजा को 12,00,000 मुद्रा ही वापस लौटाते थे, 800,000 स्वयं रख लेते थे। तो इस प्रकार से 800,000 सोने की मुद्रा एक महीने में हमारा यहां पर 80 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है इस समय। तो उस समय 800,000 सोने की मुद्रा एक महीने का पगार था, सैलरी था, किसका? हिरण्य और गोवर्धन दास का। और हिरण्य के एक भी पुत्र नहीं थे, निसंतान थे, लेकिन गोवर्धन दास का एक पुत्र था जिसका नाम था रघुनाथ। यह रघुनाथ का जन्म 1416 शताब्दी में अर्थात सन 1464 में हुआ। हुगली नाम के जिले में कर्णपुर गांव में रघुनाथ का जन्म हुआ और रघुनाथ जी के बचपन के बारे में बहुत कुछ वर्णन नहीं है, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि सही गोवर्धनेर पुत्र रघुनाथ दास बाल्यकाल हेते तिहो विषय उदास। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि सही गोवर्धन पुत्र व गोवर्धन दास का पुत्र रघुनाथ दास बाल्यकाल में विषय उदास, सभी विषयों से उदास रहते थे। बाल्यकाल में भी कई सारे विषय होते हैं बालक को खेलने के लिए, ये खेलना वो खेलना, यह खाना पेपरमिंट चॉकलेट इत्यादि जो भी था, वह सभी विषयों से उदासीन रहते थे। तो इस प्रकार से बचपन का वर्णन है। और इस रघुनाथ के शिक्षा गुरु थे श्री बलराम आचार्य। अक्सर रघुनाथ बलराम आचार्य के वहां शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाया करते थे और भगवान के योग अघट घटना पटेसी भगवान की शक्ति के उसी बलराम आचार्य के घर पे हरिदास ठाकुर पधारे। हरिदास ठाकुर को आप जानते ही होंगे, जो नए आए हैं उसके लिए हरिदास ठाकुर जन्म से मुसलमान थे, लेकिन मुसलमान होने के बावजूद भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे और 300,000 नाम लेने के बाद ही हरिदास ठाकुर प्रसाद लेते थे और अन्य कार्य करते थे। उनके जीवन में आया है कि साक्षात माया देवी को परास्त कर दिया हरिदास ठाकुर ने अपने नाम के बल पर, और बहुत ही अपने नाम के बल पर प्रचार करने लगे और मुसलमानों ने देखा कि यह हरिदास मुसलमान होते हुए भी हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है, इसलिए मुसलमानों ने आदेश दे दिया कि यह हरिदास को पकड़ लिया जाए और 21 बाजार में इसे कौड़े मारकर पीटा जाए। और हरिदास को 4-4 जल्ला दे, एक हरिदास को 21 बाजारों में पीटते थे। 21 बाजार में पीटने का अर्थ होता है कि किसी भी एक बाजार में एक चौराहे में लेकर जाते थे और उस चौराहे में इतना पीटते थे जब तक हरिदास बेहोश न हो जाए तब तक पीटना बंद नहीं होता था, और बेहोश हो जाने के बाद उसे दूसरी बाजार में लेकर जाते थे और वहां पर भी पीटा जाता था। लेकिन पीटते 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 वह कोड़े मारने वाले जल्लाद थक गए, लेकिन हरिदास के मुख से हरे कृष्ण महामंत्र बंद नहीं हुआ। और कोड़े मारते 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 जल्लाद कहने लगे, हरिदास तुम अपना मजहब अपना मुसलमान धर्म छोड़कर या हिंदू धर्म स्वीकार लिए हो, तुम काफिर बन गए हो, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम हरिनाम लेना बंद कर दो हरिदास, तुम हरिनाम लेना बंद कर दो। लेकिन उस हालत में भी हरिदास इतना ही कहते थे कि खंड खंड होए जदि ये तन प्राण, ताबुना बदने आमी ना छाड़ी बे हरिनाम। कि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन अगर यह जीवा ठीक रही तो मेरी जीवा हरे कृष्ण महामंत्र भगवान का नाम लेना बंद नहीं होगी। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
तो यह हरिदास इतनी बड़ी इतने बड़े दुख के बाद भी नाम लेना नहीं छोड़े, और इसी के कारण शायद इस हरिदास का नाम आगे चलकर नामाचार्य हुआ, नाम के आचार्य हुए हरिदास ठाकुर। और यह हरिदास ठाकुर श्री बलराम आचार्य जो रघुनाथ के शिक्षा गुरु है उनके घर पे आए, और उस दिन रघुनाथ घर पर बैठे थे और उन्होंने हरिदास ठाकुर का दर्शन किया। नरोत्तम दास ठाकुर जैसे लिखते हैं अपने भजन में, दर्शन पवित्र कर यही तुम्हार गुण, भगवान के भक्तों के दर्शन करने मात्र से हृदय पवित्र हो जाता है। तो रघुनाथ हरिदास ठाकुर का दर्शन किए, दंडवत किए, और अब तो रघुनाथ को मौका मिल गया हरिदास ठाकुर की सेवा करने का। तो अब प्रतिदिन हरिदास ठाकुर की सेवा करते थे और हरिदास ठाकुर से कृपा प्राप्त करके हरिदास ठाकुर का संग प्राप्त करते थे। और जब सत्संग होता है, इतने बड़े वैष्णव आचार्य का संग होता है, तब कथा की सरिता बहती है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, भगवान कपिलदेव कहते हैं जब मेरे भक्त आपस में मिलते हैं तब मेरी कथा की नदी बहती है। तो हरिदास ठाकुर बहुत ही सुंदर सुंदर कथाएं लीलाएं रघुनाथ को सुनाए, और हरिदास ठाकुर की कृपा प्राप्त करके बचपन से ही रघुनाथ के जीवन में यह भक्ति का प्रभाव आने लगा। कुछ दिन के बाद हरिदास ठाकुर श्री बलराम आचार्य के घर से लौट गए, लेकिन रघुनाथ के हृदय में भक्ति का प्रारंभ हो गया और धीरे धीरे यह भक्ति बढ़ने लगी। तो जैसे मैं कहा, हिरण्य और गोवर्धन दास ये दोनों माने जाने गांव के व्यक्ति थे, तो इसके घर में दिन में कई सारे लोग आया करते थे, कई ब्राह्मण आया करते थे पूजा पाठ हवन इत्यादि करने के लिए, कई भिक्षुक भी आते थे दान इत्यादि मांगने के लिए, कई ज्ञानी आते थे, कई दरिद्र आते थे, विद्यार्थी आते थे, यात्री आते थे, कई लोग रघुनाथ के घर पे हिरण्य और गोवर्धन दास को मिलने के लिए आते थे। तो उन दिनों चैतन्य महाप्रभु का यश, चैतन्य महाप्रभु प्रचार करना प्रारंभ कर दिए थे, संन्यास ले लिए थे, और चैतन्य महाप्रभु का यश पूरे समग्र विश्व में फैल गया था। और यह जितने भी लोग रघुनाथ के घर पर आते थे तो यह चैतन्य महाप्रभु के यश की बात किया करते थे, और रघुनाथ इस चैतन्य महाप्रभु की लीला को सुना करते थे। और धीरे धीरे यह गौरांग चैतन्य महाप्रभु की लीला चैतन्य रघुनाथ को भाने लगी, और हरिदास ठाकुर की कृपा से और गौरांग चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते लेते रघुनाथ के हृदय में प्रगाढ़ प्रेम चैतन्य महाप्रभु के प्रति उदय हो गया। वास्तव में यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और यही प्रार्थना होनी चाहिए, गौरांग बलिते हवे, कब गौरांग बोलकर मेरे नेत्र अश्रु से भर जाएंगे। तो रघुनाथ के हृदय में प्रेम उदित हो गया, और यह प्रेम कोई साधारण नहीं था। भागवत में आया है कि जब कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम हो जाता है तब देहम निजम भारवत, यह जो देह है, यह जो शरीर है, यह भार लगने लगता है। और बड़ी बड़ी पदवी, यहां तक ब्रह्मा जी की पदवी भी कीड़े के समान दिखती है। और इस संसार के, इस भौतिक संसार बिल्कुल जहर की तरह लगने लगता है। और यही हालत रघुनाथ की हो गई। रघुनाथ मन ही मन में ये प्लान बनाया करते थे, कब मैं इस भौतिक संसार को छोड़कर मैं चैतन्य महाप्रभु के पास जाऊं और निरंतर अजस अविरत भक्ति को प्राप्त करूं। और इसके लिए रोज प्लान बनाया करते थे कि कैसे मैं यह घर छोड़कर भाग जाऊं और चैतन्य महाप्रभु के साथ मिलकर भजन करूं। चैतन्य महाप्रभु से मिलने की इच्छा के कारण वह ठीक से सोते भी नहीं थे और आहार भी नहीं लेते थे। तो इसके कारण रघुनाथ के माता पिता ने पूछा कि क्यों इस प्रकार की हरकतें किया करते हो। लेकिन रघुनाथ, वास्तव में शुद्ध प्रेम रघुनाथ के हृदय में उदय हो गया था, इसलिए रघुनाथ के चैतन्य महाप्रभु के विरह के कारण, मिलने की आग के कारण रघुनाथ की आंख से अजस अविरत अश्रुधारा निकलती रहती थी। अब रघुनाथ को यह चैतन्य महाप्रभु के साथ मिलन जो मिलना था, यह भुलाने के लिए बहुत प्रयास किया हिरण्य और गोवर्धन दास ने। हिरण्यदास ने और गोवर्धन दास ने कई कई प्रयास किए कि रघुनाथ चैतन्य महाप्रभु से न मिले। तो प्रयास इस प्रकार से था कि सबसे पहले रघुनाथ को भोग विलास और सुख दिया गया। अगर इस रघुनाथ को भोग और सुख और विलास देंगे तो यह चैतन्य महाप्रभु को भूल जाएगा और यह यहां पर ही पड़ा रहेगा। लेकिन रघुनाथ का प्रेम, मिलने की जो आग थी, वह कम नहीं हुई। अंत में उन्होंने सोचा कि अगर रघुनाथ का विवाह करवा दिया जाए तो यह अपनी पत्नी के साथ प्रेम से रहेगा और महाप्रभु से मिलने की जो इसकी लत है यह भूल जाएगा। तो इसलिए स्वर्ग की अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री के साथ रघुनाथ का विवाह करवाया गया। रघुनाथ ने विवाह भी कर लिया, लेकिन विवाह करने के बाद कोसों दूर अपनी पत्नी से रहा करते थे। गौरांग महाप्रभु से मिलने की आग रघुनाथ के हृदय में थी। इस संसार का कोई भी कितना भी बड़ा भोग रघुनाथ को स्पर्श नहीं कर सका। और तब हिरण्य और गोवर्धन दास ने सोचा कि अब यह रघुनाथ हमारे हाथ नहीं रहेगा, क्योंकि कई बार घर से भाग जाते थे और उनके पिता कई बार उसे पकड़ पकड़ कर घर पर वापस लाया करते थे। अंत में रघुनाथ को रस्सी से बांधकर एक कमरे में बिल्कुल जोर से रस्सी से बांध दिया। लिखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, बार बार पलाये ती हो नीलाद्री याईते, पिता तारे बांधी रखीन आनी पथ है ते। बार बार यह नीलाचल जाने के लिए घर से भागा करता था, इसलिए पिताजी ने इसे बांधकर घर में रख दिया। तो एक बार उन्हीं दिनों रघुनाथ को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में आए हैं। शांतिपुर रघुनाथ दास जिस गांव में रहते थे उससे बहुत ही नजदीक ही था। तो शांतिपुर में चैतन्य महाप्रभु आए हैं यह सुनकर मिलने की और चाह रघुनाथ के हृदय में बढ़ गई और अपनी माता और पिता से निवेदन करने लगे, हाथ जोड़कर कहने लगे, हे बाबा आज्ञा देई देखी प्रभुर चरण। बाबा जी कृपया करके हमें आज्ञा दीजिए कि मैं प्रभु का चरण देख सकूं, प्रभु के चरण का दर्शन कर सकूं। आज्ञा देई देखी प्रभुर चरण, अन्यथा न रहे मोर शरीर जीवन। अगर आप हमें आज्ञा नहीं देंगे, अगर आप हमें जाने नहीं देंगे तो मेरा यह जीवन नहीं रहेगा। मैं यहाँ पर इस घर में मैं अपना देह त्याग कर दूंगा अगर तुम मुझे यहाँ से रिहा नहीं किए। तो कृपया करके आप हमें आज्ञा दीजिए ताकि मैं गौरांग महाप्रभु से मिल सकूं। तब यह तीव्रता देखकर उन्होंने सोचा कि इसे महाप्रभु से मिलना है। अगर हम इसे महाप्रभु से मिले देंगे तो अगर ये महाप्रभु से मिल लेगा तो महाप्रभु से मिलने की जो आग है वह खत्म हो जाएगी, ये वापस घर पे आ जाएगा। यह सोचकर उनके पिता ने उसे आज्ञा दे दी कि ठीक है तुम जाओ और मिल कर आओ। और जाते वक्त माता ने बहुत कहा कि तुम एकमात्र हमारे वंश के वंशधर हो, तुम्हारे बाद हमारे वंश में कोई नहीं है, तुम एक लौते पुत्र हो, हमारे पूरे कुटुंब के फैमिली के एक लौते वंशधर हो, तो कृपया करके तुम जल्द से जल्द यहाँ पर वापस लौट कर आ जाना। और उनके पिता ने कई सारे सैनिक और ब्राह्मण इत्यादि को साथ में भेजा कि तुम साथ में जाओ और चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करा के लेके आओ। तो रघुनाथ चैतन्य महाप्रभु का गए शांतिपुर और शांतिपुर में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किए। बहुत बड़ा विस्तृत रूप में वर्णन है लेकिन हमें आगे चलना है। और चैतन्य महाप्रभु के साथ कई दिन रहे और रघुनाथ कहने लगे बस हमें अब आपके पास ही रहना है, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि रघुनाथ तुम स्थिर होकर घर लौट जाओ, क्योंकि यह जो तुम्हारा वैराग्य है यह मरकट वैराग्य है। कभी भी किसी व्यक्ति को भाव में आकर मरकट वैराग्य नहीं करना चाहिए। तुम घर जाओ और घर जाकर अनासक्त होकर जीवन के भोग भोगो। भोग भोगना है लेकिन अनासक्त होकर, क्योंकि कर्म में जो लिखा है यह तो हमें भोगना ही पड़ता है। तो भोगना है लेकिन आसक्त नहीं होना है उससे। चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया भोगो लेकिन अनासक्त होकर, और एक दिन ऐसा आएगा कृष्ण की कृपा होगी कि तुम मेरे पास आ जाओगे। रघुनाथ मैं अभी जा रहा हूं वृंदावन, और वृंदावन से जब मैं वापस लौटूंगा तब तुम नीलाचल में मेरे पास आ जाना। और नीलाचल में कैसे आओगे, तो कैसे भी करके युक्ति करके तुम नीलाचल में मेरे पास आ जाना। तब रघुनाथ ने कहा कौन सी युक्ति, यह भी आप बता दीजिए साथ में कि किस प्रकार मैं आपके पास आऊं। तब महाप्रभु ने कहा कि यह युक्ति कृष्ण ही तुम्हारे हृदय में स्फुरित करेंगे समय आने पर, इसलिए तुम अभी वापस घर को लौट जाओ। तो यह सुनकर रोते हुए रघुनाथ वापस घर को लौटे। अब एक ही सहारा रघुनाथ का था, वो था अश्रुधारा। अश्रुधारा ही उसके मित्र बन गए और उसकी आंखों से अश्रुधारा सूख नहीं रही थी। और रघुनाथ वापस घर पर लौट गए। और इस बार या दूसरी बार रघुनाथ जी चैतन्य महाप्रभु से मिले और वापस गए। और इस बार जब घर गए तब बहुत ही नॉर्मल कंडीशन में रहे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया था मरकट वैराग्य नहीं करना है। तो बहुत ही नॉर्मल कंडीशन में रहे, तो घर वालों को लगा अब ये ठीक हो गया है। अब तक तो घर वालों को था कि यह पागल हो गया है, लेकिन अब यह ठीक है, इसलिए अब ये ठीक से घर में रहने लगे। और घर पे रहकर उसने रघुनाथ ने अपने कुल गुरु श्री यदुनंदन आचार्य से दीक्षा प्राप्त की। भले यदुनंदन आचार्य से दीक्षा प्राप्त की लेकिन मंत्र तो हरे कृष्ण महामंत्र ही जपते थे। और रघुनाथ प्रतिदिन प्रति घंटे प्रति घड़ी वह घड़ी का इंतजार कर रहे थे कि कब महाप्रभु नीलाचल में आए और कब भगवान हमारे हृदय में वह युक्ति स्फुरित करे और कब मैं चैतन्य महाप्रभु से मिलूं। तो आगे भी एक लीला है, खैर वह लीला अब समय बीत रहा है। अब किसी के द्वारा, जैसे आगे कहा गया कि रघुनाथ के घर में कई सारे लोग आया करते थे, तो किसी के द्वारा रघुनाथ दास को पता चला कि पानीहाटी में नित्यानंद प्रभु आए हैं, पानीहाटी में नित्यानंद प्रभु आए हैं और बहुत ही भव्य महोत्सव हो रहा है, नित्यानंद प्रभु का अभिषेक हो रहा है और चैतन्य महाप्रभु से उपदेश लेकर आदेश लेकर, चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था नित्यानंद प्रभु को, तुम जाओ और प्रचार करो। तो इस प्रकार का आदेश पाकर श्रीमन नित्यानंद प्रभु पानीहाटी में आ गए और अब यहां से कथा हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी की भाषा में शुरू करेंगे। रात्रे उठी एकेला चलीला पलाया, दूर है ते पिता तारे आनील धरिया। तो अक्सर रघुनाथ रात को उठकर अकेले चल दिया करते थे और उसके पिता उसे देखकर उसे पकड़कर वापस घर लेकर आते थे। तो एही मते बारी बारी पलाया घरी आने, तबे तार माता कहे तार पिता सने। तो रघुनाथ दास की माता ने अपने पति रघुनाथ जी के पिता को कहा कि यह इस प्रकार बार बार घर से भागा करता है तो तुम्हें क्या करना है। रघुनाथ जी की माता कहती है, पुत्र बातुल हैल इहाय राखह बांधिया, तार पिता कहे तरी निवर्ण ने हया। कहते हैं पुत्र बातुल ही, हमारा जो यह पुत्र है यह बातुल, यह पागल हो गया है। क्यों पागल हो गया है? क्योंकि महाप्रभु से प्रेम कर रहा है। तो आज ऐसे ही माता पिता देखे गए हैं। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि अपना पुत्र भगवान की भक्ति करने चलता है तो उसे पागल कहा करते हैं और कहते हैं मंदिर नहीं जाना है और ऐसे सब कार्य नहीं करना है। लेकिन माता पिता को चाहिए कि अपने पुत्र को भक्ति में लगाए, प्रेरणा दे भगवान की भक्ति करने के लिए। और जो प्रेरणा माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को दी थी, लक्ष्मण जी गए भगवान श्री रामचंद्र से कहे कि मैं भी आपके साथ वन में आऊंगा। भगवान श्री रामचंद्र ने कहा अगर तुम्हें मेरे साथ वन में आना है तो अपनी माता से पूछ कर आओ, अगर उसकी अनुमति है तो हमारे साथ वन में आ सकते हो। तो लक्ष्मण जी अपनी माता सुमित्रा के पास गए और कहने लगे कि माता, हमारे बड़े भाई प्रभु श्री रामचंद्र 14 साल के लिए वन में जा रहे हैं क्योंकि कैकेयी ने कहा है तापस वेश विशेष उदास 14 वर्ष राम वनवास, वन में जा रहे हैं तो क्या मैं उसके साथ वन में जाऊं। तो माता सुमित्रा एक आदर्श माता, एक आदर्श प्रस्तुत कर रही हैं। माता ने कहा कि यह पूछने की बात है कि तुम्हारे बड़े भाई वन में जा रहे हैं और तुम्हें उसके साथ जाना है। वास्तव में आज बहुत ही शुभ दिन है कि तुम्हें यह अवसर मिल रहा है प्रभु श्री रामचंद्र की सेवा करने के लिए, भक्ति करने के लिए, और आज तुम भगवान श्री रामचंद्र की भक्ति करने के लिए जा रहे हो, इसलिए आज वास्तव में पुत्रवती अगर मैं हुई तो आज हुई। क्योंकि जिसका पुत्र भगवान का भजन करता है, भगवान की सेवा करता है, वही माता पुत्रवती कहलाने के लिए योग्य है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जातु सितु होई। और जिसका पुत्र भगवान का भजन नहीं करता है, भक्ति नहीं करता है, तो ऐसे पुत्र तो अपने माता पिता की जवानी को काटने के लिए ही जन्म लेते हैं। तो ऐसे पुत्र को जन्म दे उसे तो अच्छा है वो माता बांझ ही रह जाए। नतरु बांझ बलि बानी बियानी, राम विमुख सुख ते हित नाही। क्योंकि राम और कृष्ण से विमुख होकर जीवन में सुख नहीं मिल सकता है। तो इस प्रकार का आदर्श, इस प्रकार का माता का स्वभाव होना चाहिए कि जब अपना पुत्र भगवान की सेवा में जाए तो उसे प्रेरणा देनी चाहिए। लेकिन यहां पर माता कह रही हैं पुत्र बातुल हैल, हमारा पुत्र पागल हो गया है इसलिए बार बार घर से भागा करता है। तो अपने पति से क्या कहती है? कहती है इहाय राख बांधिया, अब इसे तुम बांध कर रखो, रस्सी से बांध दो रघुनाथ को और बांध कर घर पे रखो। लेकिन तब रघुनाथ के पिता बहुत ही सुंदर उपदेश देते हैं तार पिता कहे तारे निवर्णन हैया। बहुत ही खिन्न होकर रघुनाथ के पिता अपनी पत्नी को उत्तर देते हैं कि दंडी इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम ए सब बांधिते नारी लेक यार मना। हमने रघुनाथ को क्या कुछ नहीं दिया, रघुनाथ के पास आज इंद्र जैसा ऐश्वर्य है, किसी भी बात की कमी नहीं है। और अप्सरा सम और रघुनाथ को हमने अप्सरा जैसी पत्नी दी है, लेकिन ऐसा भोग और ऐसा ऐश्वर्य भी रघुनाथ के मन को बांध नहीं सका है। तो रघुनाथ के मन को ऐसा भोग और ऐश्वर्य बांध नहीं सका है तो यह तुच्छ रस्सी का बंधन कैसे बांध सकता है। कहते दंडीर बंधने तार राखीबा के मते जन्म दाता पिता नारी प्रारब्ध खंडाइते। जन्म देने वाला पिता भी अपने प्रारब्ध से बंधा हुआ है तो वह अपने पुत्र को कैसे बांध सकता है। तब कहते चैतन्य चंद्रेर कृपा हैया चे इहारी। जिस पर चैतन्य चंद्र की, जिस पर महाप्रभु की कृपा हो जाए, चैतन्य चंद्रेर बातुल के राखी ते पारी। जिस पर महाप्रभु की कृपा हो जाए वह महाप्रभु के लिए पागल हो जाएगा, दीवाना हो जाएगा महाप्रभु के पीछे। और जो व्यक्ति पर महाप्रभु की कृपा हो गई, महाप्रभु का दीवाना हो गया, इसे कौन बांध कर रख सकता है। इसलिए हे भारिया, हे देवी, इसे बांध कर हम नहीं रख सकते। तबे रघुनाथ किचु विचारिला मने नित्यानंद गोसाई रे पाश चलीला आरती ने। तब रघुनाथ दास दूसरे ही दिन नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए चल गए। पानी हाटी ग्रामे पाइला प्रभुर दर्शन। तब रघुनाथ दास पानी हाटी पर पहुंचे और बहुत ही दूर से कीर्तनिया सेवक संगे आर बहुजन, बहुत ही दूर से देखा कि कई सारे जन, कई सारे भक्त कीर्तन कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु के आजू बाजू में। गंगा तीरे वृक्ष मूले पिंडार ऊपरे वासिया छेन येन कोटि सूर्योदय करे। गंगा नदी के तट पर एक वृक्ष के पिंडार, एक वृक्ष के, हम यहाँ पर देखेंगे, वृक्ष के आजू बाजू में एक, गुजराती में उसे ओटला कहते हैं। अब हिंदी में मैं बहुत ही ट्रेन में एक घंटा यह सोचा कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे, शब्द नहीं मिल रहा था। हाँ, चबूतरा भी कहते हैं इसे। तो नित्यानंद प्रभु ऐसे ही एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे थे। गंगा तेरे वृक्ष मूले पिंडार ऊपरे बसिया छेन, नित्यानंद प्रभु बसिया छेन बैठे थे। और ये न कोटि सूर्योदय करे, और उस नित्यानंद प्रभु के मुख से, नित्यानंद प्रभु के शरीर से कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों सूर्य का तेज प्रकाशित हो रहा था। तले ऊपरे बहु भक्त हया छे वेष्टित देखी प्रभुर प्रभाव रघुनाथ विस्मित। तले ऊपरे बहु भक्त, नित्यानंद प्रभु के आजू बाजू में कई सारे भक्त बैठे थे और प्रभु के इस प्रकार तेज को देखकर रघुनाथ जी विस्मित हो गए। और दंडवट हैया से ही पड़ेलिया कत दूरे सेवक कहे रघुनाथ दंडवट करे। दंडवट हैया से ही पड़ीला कत दूरे, बहुत ही दूर से रघुनाथ दास ने नित्यानंद प्रभु को दंडवट किया, दूर से ही, नजदीक नहीं गए। कि वास्तव में जो शुद्ध भक्त होते हैं वो मानते हैं कि मैं अधम हूं और मेरी कोई योग्यता नहीं है भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ, भगवान के पार्षदों के साथ मिलने की। इसलिए बहुत दूर से रघुनाथ दास ने नित्यानंद प्रभु को दंडवट किया। लेकिन यह नित्यानंद प्रभु के आजू बाजू में कई सारे भक्त बैठे थे, उस भक्तों में से किसी एक भक्त ने देख लिया तो उस भक्त ने कहा रघुनाथ दंडवट करे, देखिए रघुनाथ आपको दंडवट कर रहा है। अब आएगी मजा। सुनी प्रभु कहे चोर दिली दर्शन। नित्यानंद प्रभु ने सुना कि रघुनाथ दर्शन कर रहा है, तब नित्यानंद प्रभु ने कहा आज चोर ने दर्शन दे दिया, और आए आए आजी तोर करीमु दंडन, आओ आओ तू यहां पर आ, अब मैं तुझे दंड देता हूं, अब मैं तुम्हें दंड देता हूं। प्रभु बोलाए ते हो निकटे ना करे गमन, आकर्षिया तार माथे प्रभु घरेला चरण। प्रभु ने नित्यानंद प्रभु ने बुलाया के निकट आओ, यहां नजदीक आओ, लेकिन रघुनाथ दास नहीं जा रहे थे। तो रघुनाथ दास जब नहीं गए तब आकर्षिया एकदम क्या कहते हैं उसे, खींचकर जबरदस्ती रघुनाथ को खींचा और रघुनाथ के सिर पर नित्यानंद प्रभु ने अपना चरण स्पर्श किया। देखिए जिसके सिर पर नित्यानंद प्रभु जबरदस्ती चरण रखे तो जीव का क्या कहना, वह जीव कितना भाग्यशाली होगा जिसके ऊपर श्रीमन नित्यानंद प्रभु का चरण पड़ जाए। तो नित्यानंद प्रभु ने जबरदस्ती रघुनाथ के सिर पर चरण दिया। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु का के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास के ऊपर चरण तो रखा लेकिन क्रोध में आकर नहीं रखा। कहते हैं कौतुकी नित्यानंद सहजे दयामय। नित्यानंद का स्वभाव कौतुकी है। कौतुकी का अर्थ होता है हंसाने वाला, जैसे हमारे इस्कॉन में सार्वभौम प्रभु है, बहुत मोटे हैं, वो कुछ भी करते तो हंसी आ जाती है हमें, कुछ भी बोलते हैं। तो इस प्रकार का स्वभाव नित्यानंद प्रभु का था, कौतुकी और सहज दयामय, और दयामय स्वभाव था। अब आप ही कल्पना कीजिए कितना दयामय नित्यानंद प्रभु का स्वभाव होगा कि रघुनाथ दास को खींचकर जबरदस्ती रघुनाथ दास के सिर पर अपना चरण रखे। कितने दयालु नित्यानंद प्रभु है। मैं यहां पर एक कथा कहना चाहता था जगाए मधाई की, लेकिन समय बहुत ही पार कर चुका है। नित्यानंद प्रभु, जो नित्यानंद प्रभु अनंत शेष के अवतार है, साक्षात अनंत शेष है, और अपने अपनी फैन के ऊपर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को टिका कर खड़े हैं, लेकिन ऐसे नित्यानंद प्रभु को जगाए मदन ने जब पत्थर मारा, और चैतन्य महाप्रभु क्रोधित हो गए, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को भी ठंडा कर दिया। बहुत ही कृपालु अवतार है नित्यानंद प्रभु का। तो कौतुकी नित्यानंद सहज दयामय, कौतुकी और दयामय नित्यानंद प्रभु का स्वभाव था। और रघुनाथे कहे किचू हया सदै, और इस प्रकार रघुनाथ दास को कहने लगे। क्या कहे, निकटे आईस, नजदीक आओ नजदीक आओ, यहां पर निकटे आईस चोरा भाग दूर दूरे। ये चोर तुम नजदीक आओ नजदीक आओ, क्यों दूर भाग रहे हो। निकटे ना आईस चोरा भाग दूर दूर, आज ही लागू पाया छी दंडे पू तुम्हारे। निकट आओ, आज मैं तुम्हें दंड देकर ही रहूंगा। हे चोर नजदीक आओ। अब सब लोग सोचने लगे कि नित्यानंद प्रभु इसे चोर क्यों कह रहे हैं, क्या वास्तव में कुछ चोर थे नित्यानंद रघुनाथ दास गोस्वामी। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो वर्णन नहीं किए हैं, लेकिन भागवत में और अन्य जगह पर हुआ है कि नित्यानंद प्रभु ने कहा तुम चोर हो, और चोर इसलिए हो क्योंकि तुमने मेरी संपत्ति को चुरा कर रखा है। नित्यानंद प्रभु की संपत्ति क्या है, नित्यानंद प्रभु की संपत्ति है गौरांग महाप्रभु। हे रघुनाथ, गौरांग महाप्रभु मेरी संपत्ति है, और गौरांग मेरा धन है, और मेरी परवानगी के बिना, मेरी आज्ञा के बिना तुम इस धन को लूट रहे हो। बहुत बड़ा सिद्धांत नित्यानंद प्रभु यहां पर स्थापित कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि मेरी आज्ञा के बिना, मुझे बताए बिना तुम चैतन्य महाप्रभु को मिल रहे हो, और दो बार मिल चुके हो और अब भी मिलने जा रहे हो, तुम बहुत बड़े चोर हो। वास्तव में बहुत बड़ा सिद्धांत है, नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है, और यहां पर सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि गुरु के बिना हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, कर ही नहीं कर सकते, अगर करते तो हम चोर हैं। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कर ही नहीं सकते। तो गुरु की बहुत आवश्यकता है हमारे जीवन में, बिना गुरु के भगवान प्राप्त नहीं होते। खैर बहुत बड़ा सिद्धांत है, लेकिन अब मैं लीला ही कहूंगा। तो तुम चोर हो क्योंकि तुमने मेरी संपत्ति मेरा धन को चुराया है, मुझे कहे बिना मेरी आज्ञा के बिना तुम महाप्रभु से मिले हो, इसलिए तुम्हें इसका दंड मिलेगा। तो डर गए रघुनाथ जी कि क्या दंड मिलेगा, अब बताइए दंड भी क्या है यह तो बताइए। तब नित्यानंद प्रभु कहते हैं, दधि चिड़ा भक्षण करा हम मोरे गण, दधि चिड़ा मेरे भक्तों को तुम खिलाओ, यह है तुम्हारा दंड। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
तो दधि चिड़ा भक्षण करा हम मोरे गणे, सुनी अनर्दित हेल रघुनाथे मने। रघुनाथ जी ने जब यह सुना कि प्रभु ने मुझे यह दंड दिया है कि सब लोगों को दही चिड़ा खिलाओ, तो यह तो बहुत आनंद की बात है, क्योंकि रघुनाथ के पास धन की कमी नहीं थी। जिसके घर पे 8 लाख सोने की मुद्रा प्रति महीने आती हो, उसके लिए दही और चिड़ा खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे ही नित्यानंद प्रभु ने कहा कि दही चिड़ा खिलाओ यही तुम्हारा दंड है, उसी क्षण उसी क्षण निज लोक पठाईला ग्रामे, उसी क्षण उसने रघुनाथ दास ने अपने भक्तों को कहा कि तुम गांव में जाकर सभी खाने के द्रव्य सभी सामग्री भक्ष्य द्रव्य लोक सब ग्राम हेते आने, तुम सब लोग जाओ और सभी प्रकार के खाने के पदार्थ जो नित्यानंद प्रभु ने कहे हैं वो लेकर आओ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे क्या क्या लेकर आओ, तो देखिए माता जी के लिए बहुत ही क्योंकि वो बनाते हैं इसलिए क्या क्या लेकर आओ, तो कहते चीड़ा दधि दुग्ध संदेश आर चीनी कला सब द्रव्य आना या चौधी के धरीला। क्या क्या, चीड़ा, चीड़ा का अर्थ है पौवा जो डांगर से बनता है, चीड़ा दधि दही और दुग्ध दूध लेकर आओ। इसमें कुछ छिपा है, किसका दूध, भैंस का नहीं गाय का दूध। चीड़ा दधि दुग्ध संदेश, अब संदेश तो जिसने खाया है वही जान सकता है, जो गोपीनाथ मंदिर गए हैं और जिसने खाया है। संदेश दूध से एक मिठाई बनती है उसे संदेश कहते हैं, जो महाप्रभु को बहुत प्रिय है। तो संदेश आर चीनी, चीनी तो सब जानते हैं, शक्कर और कला, कला का अर्थ होता है केला। तो क्या क्या मंगवाया, चीड़ा पौवा दही दूध संदेश चीनी और केला, यह सब मंगवाया और सब द्रव्य आनाया चोदी के धरेला, और सब निज जन जो यह सब लेने के लिए गए थे वह सब द्रव्य लाकर चारों दिशा में इतने सारे लेकर आए थे दही और चीड़ा, हम तो बहुत कम लाए हैं लेकिन तो बहुत बहुत लाकर वहां चारों दिशा भर गई, चारों दिशा में लाकर रखा गया। महोत्सव नाम सुनी ब्राह्मण सज्जन, और यह तो बिल्कुल वायु के समान ये समाचार सब जगह फैल गया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा है। तो सुना ब्राह्मण और सज्जनों ने यह सुना, ब्राह्मण को पता चले कि यहाँ पर खाने का उत्सव है। गुजराती में एक कहावत है कि दर्जी कभी मोटा नहीं होता है और ब्राह्मण कभी पतला नहीं होगा। आप देखिए जितने भी ब्राह्मण है पेटू ही होंगे और खाने में बहुत पटु होंगे। अगर उसे 1,00,000 रुपया दिया जाए एक बाजू में और एक बाजू कहा जाए हम तुम्हें भोजन करवाएंगे, तो 1,00,000 रुपये को छोड़ देंगे, भोजन पहले करेंगे, क्योंकि भोजन में विशेष आसक्ति होती है। अक्सर पराग प्रभु हमें पूछा करते हैं कि खिचड़ी प्रसाद है आपके प्रोग्राम में, बाद में पता चला वो ब्राह्मण है पीछे बैठे हैं। कभी भी मुझे यह नहीं पूछते कौन सा प्रवचन है कौन सा टॉपिक है, इनमें से कई लोगों का अनुभव होगा, क्या खिचड़ी है प्रभु प्रवचन में तो मैं आऊंगा। खैर इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ब्राह्मण का स्वभाव है। तो महोत्सव नाम सुनी ब्राह्मण सज्जन, ब्राह्मणों ने और कई लोगों ने यह सुना कि यहाँ पर महोत्सव हो रहा है। आसित लागिल लोक असंख्य गणन, असंख्य असंख्य लोग यहाँ पर आने लगे। आर ग्रामांतर हेत सामग्री अनिल, अब इतने सारे लोग आए इसलिए जो पहले से जो सामग्री लाकर रखी थी वो कम पड़ गई। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि और सामग्री लेकर आओ, ये तो अपने गांव की सामग्री लेकर आए हो, अब कांदीवली मलाड़ कोरेगांव चर्चगेट तक जितने भी दुकानें हैं सब दुकानें से दही दूध सब लेकर आओ, जितने भी गांव है आजू बाजू में सभी गांवों से ये सब द्रव्य लेकर आओ। और शत दुई चारी होलना ताहा आनाई, शत दुई चार, शत का अर्थ है 100, दुई का अर्थ है 2 और चार का अर्थ है 4, तो शत दुई अर्थात 200 और शत चार अर्थात 400, तो 200-400 गोल गोल पात्र, जिसे क्या कहते हैं दोना, दोना भी कहते हैं, कुल्लड़ भी कहते हैं, तो 200 या 400 दोना वहां पर लेकर आए। बड़ बड़ मृत्यु कुंडिका आना इल 5-7, और बड़े बड़े क्या कहते हैं इसमें तो कुंडिका लिखा है लेकिन बड़े बड़े मटके, चलिए मटके क्या लंबे मटके, यस, जो बड़े बड़े मिट्टी के लंबे मटके रहते हैं वो बड़े बड़े बड़ बड़ मूर्त कुंडी का आना इल 5-7, 5-7 बड़े बड़े मटके लाए गए। और एक विप्र प्रभु लागी चीड़ा भिजाए ताते, और एक विप्र, विप्र का अर्थ होता है जन्मना शुद्र जायंते संस्कारा द्विज उच्चते वेद पाठाद भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो वेद और शास्त्र पढ़ने में पारंगत होते हैं उसे विप्र कहा जाता है, अर्थात ब्राह्मण के पहले का स्टेज। ब्राह्मण इसे कहा जाता है जो ब्रह्म को जानता है, भगवान को पहचान लिया। तो एक विप्र प्रभु लागी, प्रभु के लिए, प्रभु को संतुष्ट करने के लिए चीड़ा भिजाई ताते, वो जो चीड़ा था, वह जो पौवा था वह भिगोने लगे। एक ठाई तप्त दुग्धे चीड़ा भिजाइया, जो बड़ा मटका था उस एक मटके में गरम गरम दूध डाला और उसमें वह जो चीड़ा था वह पौवा था वह भिगोया। और आर्धे क छानील दधी चीनी कला दिया, और जो राइस, जो चावल लाया गया था उसका आधा भाग, आधा चावल दही में डाला गया और उस दही में चीनी शक्कर डाला गया और कला केले डाले गए। और आर आधे के घनावृत दुख देते छानिल, और जो आधा चावल बच गया था बॉईल किया हुआ आधा चावल वो दुख देते छानिल वह दूध में डाला गया, याद रहा, आधा चावल दही में और वो दही में, दही में क्या है, चावल है, शक्कर है और केला है, ठीक है, और जो आधा चावल था वह दूध में डाला गया था, इसका अर्थ है स्वीट राइस बना दिया। चंपा कला चीनी घृत कपूरे तारे दिल, और उस दूध में चंपा कला नाम का केला आता है, चंपा कला नाम की एक जाति है, जैसे हम गुजराती में टिपकी वाला केला कहते हैं वैसे चंपा कला केला, तो उसमें चंपा कला केला चीनी घी कपूर डाला गया, किसमें, दूध में आधा चावल डाला और चंपा कला केला डाला, चीनी डाला, घी डाला और कपूर डाला, तो इस प्रकार से बनाया गया। अब धूति परी प्रभु यदि पीड़ाते वसीला, अब नित्यानंद प्रभु देख रहे थे कि सब बन रहा है तो गए फ्रेश होकर धोती परी, नई धोती पहनकर, नए कपड़े पहनकर, क्योंकि महोत्सव हो रहा था, तो धोती परी प्रभु, यह श्लोक सुनकर मैं बहुत जल्दी आकर शेविंग करके कपड़े वपड़े पहनकर तैयार हो गया, क्योंकि धोती परी प्रभु ने धोती पहना है, नए नए कपड़े पहने हैं, तो हमें भी इस उत्सव में भाग लेकर थोड़ा सज धड़ कर बैठना चाहिए। धोती परी प्रभु यदि पीड़ाते वसीला, धोती पहनकर, नए कपड़े वस्त्र पहनकर नित्यानंद प्रभु पीड़ाते उस चबूतरे पर पेड़ के नीचे बैठे, तब सात कुंडी विप्र तार आगे ते धरीला, तब वह विप्र ने जो यह दही चीड़ा बनाया था वह सात कुंडी, सात कुल्लड़ नित्यानंद प्रभु के सामने रख दिए। चबूतरा ऊपरे यत प्रभुर निज गणे बड़ बड़ लोक वसीला मंडली रचने। उस चबूतर के ऊपर सिर्फ नित्यानंद प्रभु नहीं, चबूतरता ऊपर यत प्रभुर निज गणे, नित्यानंद प्रभु के जो निज पार्षद थे वह भी उस चबूतर के ऊपर बैठे थे और बड़े बड़े लोग मंडली बनाकर उस चबूतरे के ऊपर बैठे थे। छोटा नहीं था वह, बहुत बड़ा चबूतरा था वह। और कौन कौन थे? कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कौन कौन उस चबूतरे पर बैठे थे, बड़े बड़े लोग हैं तो उसका नाम तो लेना होगा। तो कहते रामदास सुरानंद दास गदाधर मुरारी कमलाकर सदाशिव पुरंदर। रामदास सुदरानंद गदाधर दास मुरारी कमलाकर सदाशिव और पुरंदर ये, और धनंजय जगदीश परमेश्वर दास महेश गौरीदास होड़ कृष्णदास। और ये धनंजय जगदीश परमेश्वर दास महेश गौरीदास और होड़ कृष्णदास ये सब वहां पर बैठे थे। और उदाहरण दत्त आदि यत निज गण ये सब उस चबूतरे के ऊपर बैठे थे। ऊपर बसीला कब के करे गणन। अब इतने लोग ऊपर बैठे थे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं कैसे गिनूं ये लोगों को, इतने लोग उस चबूतरे के ऊपर बैठे थे। कह रहे हैं के करे गणन, कैसे इसका मैं गणना करूं, कैसे इसको गिनूं। तब भक्ति प्रभुपाद जी तात्पर्य में भक्ति सांसरी ठाकुर महाराज का कोटेशन करते हैं, यह सब भक्तों का क्या परिचय है इत्यादि। तो शुनी पंडित भट्टाचार्य यत विप्र आइला। दूसरी बार जब सुना कि यहाँ पर महोत्सव हो रहा है तो भट्टाचार्य ब्राह्मण और पुरोहित ये सब यहाँ पर आने लगे और मान्य करी प्रभु साबारे उपारे वसाइला। क्योंकि यह भट्टाचार्य थे, यह विप्र यह बहुत बड़े पंडित थे, शास्त्रज्ञ थे, इसलिए नित्यानंद प्रभु ने ऐसे बड़े लोगों को आसन पर चबूतरा के ऊपर बैठाया। दुई दुई मृत कुड़ी का साबार आगे दिल। अब जो सर्विस करने वाले हैं ध्यान से सुने, दुई दुई मृत कुंडी का सबार आगे दिल, सबार आगे दिल सबके आगे रखा क्या, दो दो कुल्लड़। जितने भी खाने वाले थे उसके आगे दो दो कुल्लड़ रखे गए। और एक दुग्ध चीड़ा आर दही चीड़ा केल। सर्विस वाले एक कुल्लड़ में दूध से बिना बना हुआ चीड़ा था और एक में दही से बना हुआ चीड़ा था, एक में दूध चीड़ा था और एक में दही चीड़ा था। देखना मिक्स ना हो जाए, आदेश प्रभु कल मिक्स करने के लिए कह रहे थे। आ रहे तो लोक सब चोतरा तलाने मंडली बधे वसीला तारना हय गणने। और सब लोग और जितने भी लोग थे वह चोतरा तलाने, वह चोतरे के तल में अर्थात वह चबूतरे के नीचे बैठे थे। और जितने भी लोग थे, क्योंकि बहुत लोग आए थे तो चबूतरे के नीचे बैठे और मंडली बंध वसीला, और सब लोग नीचे भी जो बैठे थे वो बड़ी बड़ी मंडली बनाकर, बड़ा बड़ा ग्रुप बनाकर नीचे बैठे थे। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कर रहे हैं तारना हय गणने। अब इसकी गणना मेरे बस की बात नहीं है, मैं कह नहीं सकता हूँ कितने लोग, फिगर क्या था, लेकिन बहुत सारे लोग बैठे थे। एक एक जनरी दुई दई होलना दिल, एक एक जन को दो दो कुल्लड़ दिए गए। और दधी चीड़ा दुग्ध चीड़ा दुई ते भिजाइल। और दही चीड़ा और दूध चीड़ा यह दोनों कुल्लड़ में यह सबको दिया गया। कौन कौन विप्र उपरे स्थान ना पाया दुई होलनाए चीड़ा बिजारा गंगा, बिजारा गंगा तारे गिया। अब वह चबूतरे पे हाउसफुल हो गया चबूतरा, और चबूतरा के नीचे की भी जो जगह थी वह भी हाउसफुल हो गई, और लोग आ रहे थे, इतने लोग आ रहे थे और जगह फुल हो गई। तब कहा गया कि अब यहाँ पर बैठने की जगह नहीं है, अब आप यह दोनों दोना लेकर, दही चीड़ा और दूध चीड़ा लेकर गंगा के तीर पर जाकर बैठकर आराम से खाओ। और गंगा का तीर तो बहुत बड़ा, बहुत लंबा है। तो कौन कौन विप्र उपरे स्थान ना पाया, कई सारे विप्रों ने, कई सारे ब्राह्मण ने स्थान न पाया, स्थान नहीं मिला। तो दुई को दुई दोनाए चीड़ा भिजा है गंगा तारे गया, और दो दो दोना लेकर गंगा के किनारे चले गए। अब तो धीरे धीरे करके गंगा का किनारा भी हाउसफुल हो गया। हम गए हैं मायापुर, कितना बड़ा तट है गंगा का, लेकिन इतने सारे हजारों करोड़ लोग, करोड़ों की संख्या में लोग आए थे कि गंगा का किनारा भी हाउसफुल हो गया। तब क्या किया, तारे स्थान ना पाया तीरे, गंगा के तीर पे जिसने स्थान नहीं पाया, तीरे स्थान ना पाया, आर कत जन जले नामी दधी चीड़ा करे भक्षण। जिसने गंगा के तट पर जिसको स्थान नहीं मिला, वो दोनों दोना लेकर गंगा नदी में चले गए और गंगा नदी में खड़े खड़े दही चीड़ा खाने लगे, और धीरे धीरे करके गंगा नदी भी हाउसफुल होती गई। और इसके आगे कविराज गोस्वामी ने वर्णन नहीं किया। केह ऊपर केह तले केह गंगा तीरे, कुछ लोग चबूतरे के ऊपर बैठे थे केह ऊपर, और केह तले कुछ लोग नीचे बैठे थे, और कुछ लोग गंगा के तट पर चले गए और कुछ लोग गंगा में चले गए खाने के लिए, और 20 जन तीन ठाई परिवेशन करे। और ये तीनों जगह पर 20 जन 20-20 लोग सर्विस कर रहे थे। चबूतरे के ऊपर 20 लोग सर्विस कर रहे थे, और चबूतरे के नीचे जो लोग बैठे थे वहां पर 20 लोग सर्विस कर रहे थे, और गंगा के तट पर जो लोग प्रसाद ले रहे थे वहां पर 20 लोग सर्विस कर रहे थे। 20 जन तीन ठाई परिवेशन करे। हेल काले आईला तथा राघव पंडित, और उसी वक्त राघव पंडित नाम का एक भक्त वहां पर उपस्थित हुआ, और हासी ते लगीला देखी हया विस्मित, और देखा इतने सारे लोग सब हाउसफुल। तो हंसने लगा और विस्मित हो गया, ये क्या हो रहा है। और वह राघव पंडित कुछ प्रसाद लेकर नित्यानंद प्रभु के पास आए थे, तो नी शकड़ी नाना मत प्रसाद अनिल, प्रभु रे आगे आगे दिया भक्त गणे बाटी दिल। राघव पंडित कुछ प्रसाद लेकर आए थे, वह प्रसाद नित्यानंद प्रभु के पास दिया, तो नित्यानंद प्रभु ने वह प्रसाद ग्रहण किया और कहा कि सभी भक्तों को यह प्रसाद बांट दो। और इसमें कई सारे सिद्धांत, में सिद्धांत नहीं कर रहा हूं, कभी भी प्रसाद आए तो खा नहीं लेना चाहिए, सबको बांटना चाहिए। प्रभुर कहे तोमा लागी भोग लगाइल, तुम यहा उत्सव कर घरे प्रसाद रहिल। अब रघुनाथ दास, क्षमा कीजिए, कौन है, राघव पंडित जी ने नित्यानंद प्रभु के लिए घर पर बहुत ही सुंदर व्यंजन बनाए थे, और राघव पंडित की यही सेवा हुआ करती थी, तो बहुत ही सुंदर व्यंजन बनाए। तब राघव पंडित कहते हैं कि तोमा लागी भोग लगाइल, मैंने तुम्हारे लिए भोग तैयार करके रखा है घर पर, और तुम यहाँ पर उत्सव मना रहे हो, तुम यहाँ पर आनंद कर रहे हो, घरे प्रसाद और घर पे प्रसाद ऐसे ही रह जाएगा। तब नित्यानंद प्रभु कहते हैं, प्रभु कहे ये द्रव्य दीने करिए, अब मुझे भोजन करने दो, अभी मैं बिजी हूं भोजन करने में। तो प्रभु कहे ये द्रव्य दीने करिए भोजन, दिन में अब मुझे यह भोजन करने दो, राते तुम्हारे घरे प्रसाद करी भक्षण, और जब रात होगी तब मैं तुम्हारे घर में आकर वो जो प्रसाद है उसका ग्रहण कर लूंगा, लेकिन फिलहाल डिस्टर्ब मत करो। कहने का भाव यह था, यह दिन में मुझे भोजन करने दो। और गोप जाति आमी बहु गोप गण संगे, आमी सुख पाई यही पुली न भोजन संगीत। उस वक्त नित्यानंद प्रभु को अपने अगले जन्म में जो बलराम के रूप में आए थे, और कृष्ण और बलराम अपने गोप ग्वाल के बाल के साथ प्रतिदिन वन में जाते थे और अपने ग्वाल बाल गोप बाल के साथ भोजन किया करते थे, भोजन थाली पर वृंदावन में, यह समय याद आ रहा है। कह रहे हैं गोप जाति आमी बहु गोप गण संगे, मैं यहाँ पर गोप जाति गोप गण के साथ बैठा हूँ, आमी सुख पाई यही पूलेन भोजन संगे, और यह देखकर सबके साथ भोजन करते हुए मैं सुख का अनुभव कर रहा हूँ। राघवे वसाया दुई कुंडी देवो आईला, राघव द्विविध चीड़ा ताते भिजाइला। राघव पंडित को यह दोनों कुल्लड़ दे दिए, आप भी शुरू हो जाओ। द्विधि प्रकार दोनों प्रकार के चीड़े, दही चीड़ा और दूध चीड़ा राघव पंडित को दिया गया। सकल लोकेर चीड़ा पूर्ण यबे हैल ध्याने तबे प्रभु महाप्रभु रे आनिल। हरि बोल। सकल लोकेर चीड़ा पूर्ण यबे हैल, जब सभी लोगों को चीड़ा सर्विस करने का, सबको चीड़ा पहुंच गया, सबके हाथ में दही चीड़ा और दूध चीड़ा आ गया, तब नित्यानंद प्रभु ने उस चबूतरे के ऊपर बैठकर ध्यान किया। क्योंकि नित्यानंद प्रभु भी अकेले अकेले कैसे खा सकते हैं बिना अपने प्रभु को छोड़कर। अगले जन्म में कृष्ण और बलराम थे, तो बलराम अपने छोटे भाई कृष्ण को छोड़कर कैसे प्रसाद खा सकते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने ध्याने तबे प्रभु महाप्रभु रे अनिल, तब नित्यानंद प्रभु ने ध्यान किया और ध्यान में चैतन्य महाप्रभु को आह्वान किया, चैतन्य महाप्रभु को बुलाया और नित्यानंद प्रभु की यह उत्कंठा देकर चैतन्य महाप्रभु वहां पर उपस्थित हुए। महाप्रभु आइला, महाप्रभु आ गए। नित्यानंद प्रभु ने जब स्मरण किया महाप्रभु यहाँ पर आएंगे, महाप्रभु आइला देखी निताय उठिला, जब महाप्रभु ने को आकर देखा तब नित्यानंद प्रभु खड़े हो गए। अब ये भी एक सिद्धांत है, कई सारे सिद्धांत हैं। रोमहर्षण की कथा आप सब जानते हो, बलराम जी आए, रोमहर्षण खड़े नहीं हुए, बलराम जी ने तिनके से वध कर दिया। खैर अब लीला बह रही है तो सिद्धांत को थोड़ी देर के लिए। महाप्रभु आयला देखी निताय उठिला, महाप्रभु को आकर देखकर नित्यानंद प्रभु उठ गए। तारे लिया साबार चिड़ा देखी ते लागिला, और महाप्रभु देख रहे हैं कि सब लोग आनंद से प्रसाद ले रहे हैं, महाप्रभु खुश हुए हृदय से। वास्तव में भगवान और गुरु अपने भक्त और अपने शिष्य जब प्रसाद लेते हैं तब खुश होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। क्या है चतुर्विदाशी भगवत प्रसाद हो स्वादान तृप्तान, फिर क्या है तृप्तेय, अपने शिष्य को तृप्त देखकर गुरु भी तृप्त हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु बहुत ही संतुष्ट हुए, आनंद प्राप्त किए। तो सकल कुंडीर होलनार चिड़ार एक एक ग्रास, महाप्रभुर मुखे देन हरि परिहास। वहां पर कई सारे दही चिड़े के कुंडे पड़े थे और परिहास में नित्यानंद प्रभु ने सभी कुंडे से लेकर सभी कुलट से एक एक ग्रास, एक एक क्या कहते हैं, एक एक निवाला लेकर चैतन्य महाप्रभु के मुंह में देने लगे। अब आगे आएगा, आगे मैं बताऊंगा। और प्रभु मुखे देने करी परिहास, और परिहास करने लगे आनंद और उत्साह से। और हासी प्रभु आर एक ग्रास लिया, और प्रभु ने भी, चैतन्य महाप्रभु भी एक ग्रास लिया और तार मुखे दिया खाओ आय हसीया हसीया। और नित्यानंद प्रभु के मुख में उन्होंने एक निवाला डाला और दोनों महाप्रभु हास में बहुत ही हंसने लगे, आनंदित प्रसन्नित हो गए। एई मत निताये बुले सकल मंडले, दांडाया रंगे देखे वैष्णव सकले। अब नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को खिला रहे हैं और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को खिला रहे हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को कोई देख नहीं रहा है। आगे कहा है कि करिया बेड़ा इहा केह नहीं जाने, महाप्रभु रे दर्शन पाए कौन भाग्यवान है। कुछ कुछ जो भाग्यवान थे वही महाप्रभु को देख रहे थे, बाकी के लोग महाप्रभु को नहीं देख रहे थे। इसलिए नित्यानंद प्रभु जो कार्य कर रहे थे सब लोग बहुत ही हंसने लगे कि यह ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अब कैसा हो रहा था, जैसे कि हमने बहुत पहले एक फिल्म देखा था चमत्कार, उसमें ऐसा ही कुछ आया था। अब महाप्रभु इंडिविजुअल है, दिख नहीं रहे हैं, मान लो महाप्रभु यहाँ पर बैठे दिख नहीं रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को खिला रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु, और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को खिला रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु मुंह चबा रहे हैं, तो सब लोग को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये ऐसे करके अपना मुंह क्यों चबा रहे हैं, निवाला हवा में दे रहे हैं और मुंह अपना हिला रहे हैं। तो यह देखकर सब लोग तबे हासी नित्यानंद वसीला आसने, सब लोग हंसने लगे और आनंदित प्रसन्नित सब लोग हो गए। तबे हासी नित्यानंद वसीला आसने, चारी कुंडी आशय चीड़ा राखिला दाहिने। तब नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को आसन पे बिठाया और आसन पे बिठाने के बाद राइट हैंड साइड नित्यानंद प्रभु ने चार कुंडी दही चीड़ा का रखा गया। आसन दिया महाप्रभु रे ताहा वसाइला दुई भाई तबे चीड़ा खाई ले लागेला। नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को आसन दिया और नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को खिला रहे थे, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को खिला रहे थे, दोनों भाई एक दूसरे को खिला रहे थे और प्रेम उत्पन्न कर रहे थे। देखी नित्यानंद प्रभु आनंदित हैला कत कत भावावेश प्रकाश करीला। देखी नित्यानंद प्रभु आनंदित होला, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को देखकर मन ही मन में आनंदित हुए और कई कई भावों का प्रकाश करने लगे। आज्ञा दिला हरि बल करह भोजन। अब आपको भोजन दिया गया है इतना सारा, तो सिर्फ खाने में ध्यान मत रखो। नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा दिया कि आज्ञा दिला हरि बल कर लो भोजन, भोजन करते करते कम से कम हरि बोल तो बोला करो। तो हरि हरि ध्वनि उठे भरी लो भुवन। तब हजारों की संख्या में वहां पर लोग दही चिड़ा खा रहे थे, सब लोग हरि 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 बोल हरि बोल, इस प्रकार हरि बोल हरि हरि करते हुए विश्व ब्रह्मांड में ये आवाज गूंजने लगी। हरि हरि बलि वैष्णव करे ये भोजन, पुलिन भोजन साबार हैल स्मरण। तो हरि हरि बोलते हुए सारे वैष्णव सारे भक्त भोजन कर रहे हैं और पुलिन भोजन, और यह भोजन करते करते अपने अगले जन्म में कृष्ण जन्म में द्वापर में जो लीला हुई थी और लोग जिस प्रकार भोजन कर रहे थे वह लीला का स्मरण कर रहे हैं। यह लीला भी बहुत बड़ी है लेकिन यह नहीं कहेंगे। नित्यानंद महाप्रभु कृपालु उदार। अब ये तो आदेश प्रभु ही बताएंगे कितने नित्यानंद प्रभु उदार है। नित्यानंद महाप्रभु कृपालु उदार रघुनाथेर भागे यत केला अंगीकार। वास्तव में यह रघुनाथ दास का भाग्य था कि नित्यानंद प्रभु ने यह दही चिड़ा जो था वह ग्रहण किया। ऐसा नहीं है कि हमारे पास धन हो जाए और हम कुछ भी खरीद कर भगवान को लगा सकते हैं, इसके लिए भाग्य होना चाहिए और भाग्यवान लोगों को ही यह अवसर मिलता है। तो रघुनाथ थेर भाग्य ये तो केला अंगीकार, रघुनाथ जी का यह भाग्य था कि नित्यानंद प्रभु ने यह अंगीकार यह ग्रहण किया और नित्यानंद प्रभु की कृपा थी, क्योंकि नित्यानंद प्रभु महाकृपालु थे उदार थे इसलिए उन्होंने यह ग्रहण किया। नित्यानंद प्रभाव कृपा जानिबे कौन जन, महाप्रभु आनी कराए पुलिन भोजन। कौन नित्यानंद प्रभु की कृपा को जान सकता है, ऐसा कौन व्यक्ति है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, कौन जन ऐसा कौन व्यक्ति है जो नित्यानंद प्रभु की कृपा को और नित्यानंद प्रभु की प्रभुता को कोई जान सकता है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु साक्षात चैतन्य महाप्रभु को वहां पर उपस्थित कर दिए। महाप्रभु आनी कराए पुलिन भोजन। श्री रामदास आदि गोप प्रेमाविष्ट हैला गंगा तीर यमुना पुलिन ज्ञान केला। श्री रामदास गोप तो यह सब गोप सका प्रेमाविष्ट होकर गंगा तीर पर बैठे थे, लेकिन सब लोग को यह लग रहा था कि हम यमुना तीर पर बैठे हैं, हम यमुना के किनारे वृंदावन में बैठे हैं, सबको यह लग रहा था। महोत्सव सुनी पाशारे नाना ग्राम है ते चीड़ा दधी संदेश कला अनिल बेचे थे। जब बाजू के गांवों के व्यापारी ने बनिए वाले ने सुना कि यहाँ पर बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा है और प्रचुर मात्रा में यहाँ पर रघुनाथ दास बहुत धनी व्यक्ति है और इतना धन देकर यह दही चीड़ा ये सब खरीद रहे हैं, तो कई सारे गाँव से जो व्यापारी थे कई सारा दही चीड़ा संदेश केला यह सब लेकर आने लगे। तब रघुनाथ दास ने क्या किया, यत द्रव्य लया आई से सभ्य मूल्य करी लई रघुनाथ दास ने जितने भी लोग यह बेचने के लिए आए थे सबसे पहले उसका भाव किया और तार द्रव्य मूल्य दिया ताहरे खाओ आए, और सभी लोगों को उसका कीमत चुका कर सारे द्रव्य, सारी जो सामान था, दही चिड़ा इत्यादि सब ले लिया और सभी लोगों को अपना अपना धन दे दिया। और जो लोग बेचने के लिए आए थे उसी लोगों को उनका ही जो लेकर आए थे द्रव्य वो खिलाने लगे। इतनी बड़ी कृपा रघुनाथ जी करने लगे। कौतुक देखीते आइल यत यत जन सही चीड़ा दधी कला करील भक्षण। जितने भी लोग वहां पर देखने के लिए भी आए थे उसको भी दही चिड़ा दिया गया कि आप भी खाओ, आप भी खाओ। वास्तव में यह सिद्धांत कम से कम हमारे राधा गिरधारी मंदिर वाले भक्त को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अब खत्म होने जा रहा है। भोजन करी नित्यानंद आच मन केला चारी कुंडीर अवशेष रघुनाथे दिला। भोजन अब नित्यानंद प्रभु पेट भरकर खा लिए और भोजन करके नित्यानंद महाप्रभु हाथ मुंह धो लिए और आचमन किया और चारी कुंडीर अवशेष और चार कुंडी में जो उसने वो खा रहे थे उसका जो अवशेष बचा था, महा महा प्रसाद बचा था, वह रघुनाथे दिला, रघुनाथ जी को दिया गया। आर तीन कुंडी काय अवशेष छिल ग्रासे ग्रासे करी विप्र सब भक्ते दिल। और तीन कुंडी जो बची थी और तीन कुंडे में जो नित्यानंद प्रभु का महा महा प्रसाद बचा था वह एक ब्राह्मण ने एक विप्र ने लिया और उसमें से एक एक ग्रास, जैसे कि एक एक हाथ में हम देते हैं, एक एक निवाला सभी भक्तों को देने लगे। पुष्पमाला विप्र आनी प्रभु गले दिल चंदन आनिया प्रभुर सर्वांगे लेपिल। और नित्यानंद प्रभु के गले में एक पुष्पमाला डाली गई और उसके शरीर में चंदन लगाया गया। और सेवक तांबुल लया करे समर्पण हसीया हसीया प्रभु करे चरवण। और किसी एक भक्त ने नित्यानंद प्रभु को पान सुपारी, जो पान कहते हैं हम, वो पान लाकर दिया और प्रभु नित्यानंद प्रभु उसे हंसते हुए, हंसकर आनंदित होकर प्रसन्नत होकर वो पान चबाने लगे। माला चंदन तांबुल शेष ये आछिल श्री हस्ते प्रभु ताहा सबाकारी बाटी दिल। माला चंदन और वो जो पान शेष बचा था महा महा प्रसाद वह प्रभु ने अपने ही हाथ से सभी भक्तों को बांट दिया। आनंदित रघुनाथ प्रेमेर शेष पाया, क्षमा कीजिए, आनंदित रघुनाथ प्रभुर शेष पाया आपनार गण सह खाइल बाटिया। और आनंदित होकर प्रभु ने शेष जो बचा था, शेष जो महा महा प्रसाद बचा था वह सब रघुनाथ जी को दे दिया और रघुनाथ जी ने यह पाकर प्रसन्नित हो गए, बहुत ही धन्य हो गए। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि यह एत कहिलु नित्यानंद विहार, तो मैं यह वर्णन किया हूँ, यही वर्णन नित्यानंद प्रभु की यह लीला का वर्णन है। और नामे ख्याति यार, यह जो लीला है किस नाम से इसकी ख्याति है, तो कहते हैं चीड़ा दधी महोत्सव, इसको चीड़ा दधी महोत्सव कहते हैं। हरे
कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
चीड़ा दधी महोत्सव की चीड़ा दधी महोत्सव की चीड़ा दधी महोत्सव की नित्यानंद प्रभु की ताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। अब इसके श्याम सुंदर प्रभु कुछ शेष बहुत कुछ गलती है, बहुत कुछ कमी है इसमें, आप हमें क्षमा करें और शेष जो कुछ रह गया है कृपया करके राम सुंदर प्रभु और आदेश प्रभु से प्रार्थना करता हूँ आप कुछ।
सो मैं लाल गोविंद प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत 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 अच्छा प्रवचन दिया है। बहुत समय के बाद या पहली बार मैंने नमो महावदन्याय का इतना अच्छा तात्पर्य सुना है। और ये मेरे लिए बहुत मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हो रही कि इतना बहुत अच्छे एग्जाम्पल से उन्होंने नमो महावद्यन्याय, ये जो प्रणाम मंत्र है चैतन्य महाप्रभु का, उसको कितने अच्छे ढंग से बताया है कि इसके अंदर क्या एक्चुअल में छुपा है, क्योंकि कभी इतनी गहराई से मैंने भी इस महामंत्र को इतना कभी सोचा नहीं है अपने। और मैं यहाँ उपस्थित सारे भक्तजनों का, जैसे लौताक्ष प्रभु हैं, रामसुंदर प्रभु हैं, प्रकाश प्रभु हैं, कल्पेश प्रभु हैं, और यहाँ बहुत से भक्तजन मलाड से आए हैं, और बहुत सी माताएं हैं जो दूसरी जगह से आए, उन सबको उन सबका अभिवादन करता हूँ। और आप सबको आज गौड़ीय तरीके से आप सबका अभिवादन हम लोग करते हैं, तीन बार हरि बोल बोल के, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रभु जी ने बहुत अच्छे ढंग से बताया, एक्चुअली ये जो दही चिड़ा फेस्टिवल है, ये पूर्ण रूप से नित्यानंद प्रभु की जो करुणा है जीवों पे वो प्रकाशित करता है। अगर आप पूर्ण चैतन्य चरिता में देखेंगे या जिन्होंने पढ़ा है वो पाएंगे कि आज हम बद्ध जीवों पे जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, या हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है चैतन्य महाप्रभु से, या भक्ति के नाम पे हमारे पास जो कुछ भी है, वो हम सब पे नित्यानंद प्रभु की महा महा कृपा है। अगर आप देखेंगे तो चैतन्य चरिता में लिखने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने अंदर से प्रेरणा दी, और वो वृंदावन आके उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी। उन्होंने ही वृंदावन दास ठाकुर को अपने घर में शिक्षा दी और आगे जाके उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी। रूप और रघुनाथ दास गोस्वामी को उन्होंने ही सबसे पहले नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु से मिलाया, और उनकी कृपा प्राप्त होने के पश्चात ही उन्हें महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। उसी तरह आप देखेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी को, जब तक उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं प्राप्त हुई, नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं प्राप्त हुई, तब तक उन्हें भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं प्राप्त हुई। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को उन्होंने नवद्वीप की पूरी परिक्रमा करवाई और उन्हें आशीर्वाद देके उन्हें कहा कि अब आप चैतन्य महाप्रभु को मिलने जाइए। फिर चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें अपने पास रखा बहुत दिनों तक, फिर उनसे कहा कि अब आप वृंदावन जाइए। तो अगर आप पूरी चैतन्य चरिता में देखेंगे तो कोई भी ऐसा पार्ट है ही नहीं जहां नित्यानंद प्रभु पर्सनली या इनपर्सनली वहां है नहीं, और नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना भक्ति संभव ही नहीं है, किसी जीव के लिए संभव नहीं है। नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं, बलराम भक्ति का जो बल है वो नित्यानंद प्रभु से आता है, भक्ति का सौभाग्य नित्यानंद प्रभु से आता है। जिस व्यक्ति के पास नित्यानंद प्रभु के चरणों की कृपा नहीं, उसके पास सौभाग्य नहीं है भक्ति करने का। कहा जाता है कि यशोदा माँ जब भगवान कृष्ण को बांधती हैं तो दो उंगली कम हो जाती है, उसमें से एक उंगली होती है जीव का अपना परिश्रम भगवान को प्राप्त करने का, और दूसरा उंगली है भगवान की कृपा। और ये दोनों, अगर एक जीव बहुत परिश्रम करता है लेकिन अगर उसके ऊपर नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं है, तो उसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा असंभव है, अपने बल पे वो कभी चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए देखिए, नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु बाहर भेजते हैं प्रीचिंग करने के लिए दूसरी जगहों पे, ताकि नित्यानंद प्रभु की कृपा से लोगों को भक्ति प्राप्त हो। आप अलग अलग एपिसोड में देखेंगे चैतन्य चरितामृत के, कि अलग अलग जगह पर नित्यानंद प्रभु के पैरों का क्या लाभ है, या उससे उसकी धूल का क्या लाभ है, अलग अलग जगह पे आपको पता चलेगा। और इस जगह पर खास रूप से प्रकाशित होता है कि किस तरह से नित्यानंद प्रभु अपना पैर रघुनाथ दास गोस्वामी के सर पे रखते हैं। इसलिए ये दही चिड़ा फेस्टिवल एक उत्सव है जब हम नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो अपना वो पैर हम सबके सर पे रखें, ताकि हम सबको चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो सके। और मैं लाल गोविंद प्रभु का बहुत आभारी हूँ कि 2 साल बाद उन्होंने, उनकी कृपा से ये हमें मौका मिला है दही चिड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। और मैं यहाँ कुछ माताएं मौजूद हैं जिन्होंने बहुत मेहनत से दही चिड़ा बनाया है, और हर समय किसी ना किसी रूप से प्रभुपाद के इस आंदोलन में हम सबको सहयोग देते हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उन माताओं के लिए एक बार जोर से आप हरि बोल बोलिए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और आप यहाँ उपस्थित सारे भक्तजनों से प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह से आप, 1 सेकेंड जस्ट गिव मी दैट बुक। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग गंगा में खड़े होके दोनों हाथों में दोने लेके खा रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने भर पेट दही चिड़ा खाया है। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आपके लिए गंगा का तट तो नहीं है, लेकिन आप दोनों हाथों में दोने पकड़ के भर पेट प्रसाद लीजिए और ये जो महाप्रभु की कृपा है उसको अपने हृदय में आह्वान कीजिए। हरि बोल।
जाइएगा। हरे कृष्ण।